विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदना ब्रज जन रंगना। यशोदा नंदना ब्रज जन रंगना। यमुना तीरा वन यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंगना। यशोदानंदन ब्रज जन रंगना। यशोदानंदन ब्रज जन रंगना। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jaya Prabhu Pada. Jaya Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Jaya Jaya Guru Dev. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राजधानी तथा साबो राजधानी तथा साबो सर्वयादव भूभुजाम सर्वयादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरिः नित्यं सन्निहितो हरिः राजधानी तथा साभो सर्वयाद्वभुभुजां मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः
राजधानी तथा साब मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि
Sarvayadava Bhujam
माता जी राजधानी
राजधानी
ततः उस समय से सा वह मथुरा नामक नगरी तथा देश अभूत बन गया सर्व यादव भूभुजां यदुवंश में होने वाले सारे राजाओं की मथुरा नामक स्थान भगवान यत्र जहां नित्यम शाश्वत रूप से सन्निहितः घनिष्ठता पूर्वक संबंध और नित्यवास करते हुए हरि ही भगवान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंश राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं क्योंकि वहां कृष्ण का नित्य वास है। तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगरी नहीं क्योंकि यह सदा से भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। चूंकि मथुरा तथा वृंदावन का कृष्ण से शाश्वत संबंध है इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में मान्य है और जो भी वहां जाता है शुद्ध बन जाता है। नवद्वीप धाम भी व्रजभूमि से घनिष्ठता पूर्वक संबंध रखता है। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौड़मंडल भूमि ये बा जाने चिंतामणि तारहय व्रजभूमि वास। व्रजभूमि द्योतक है मथुरा वृंदावन का और गौरमंडल भूमि के अंतर्गत नवद्वीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न है इसलिए नवद्वीप धाम का कोई भी वासी जो कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है वह व्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप में वास करना और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र न जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवद्वीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध भगवान से टूटता नहीं। जो हो हमें चाहिए कि मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वह शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा पूरा लाभ उठाएं। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए मथुरा तथा वृंदावन इस धराधाम में स्थित होकर भी भगवान के दिव्य धाम है।
हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय, इसका 28वां श्लोक पढ़ रहे हैं। राजधानी तथा साभुत सर्व यादव भूजा मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरिहि। उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ कृष्ण का नित्य वास है। श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंद है वहाँ तक इतने सालों से हमने प्रवास किया है। कृष्ण की महानता समझाने के लिए शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अन्य अनेक अवतारों के बारे में बताते हैं, सृष्टि का वर्णन करते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनको कोई साधारण न समझे। क्योंकि जब मनुष्य देह रूप लेकर आते हैं, मनुष्य जैसा जब देह आता है, तो मनुष्य प्राणी अपने अज्ञान के कारण उनको अपने जैसे ही समझते हैं। ये भूल वो न करे, इसलिए पहले 9 अध्याय भगवान की महानता को प्रकट करते हैं, अनेकों अवतारों के बारे में बताते हैं। और अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्व कारण कारणम सारे अवतारों के स्रोत, इनके बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है। इनके पहले स्कंदों में क्षत्रिय राजाओं की वंशावली का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया, सूर्यवंश और चंद्रवंश, और चंद्रवंश में अर्थात सोमवंश उसमें महाराज यदु और फिर उनके रिश्ते में आते हुए भोजवंश के राजा वृष्णिवंश के राजाओं, इनका वर्णन अब सुखदेव गोस्वामी करने वाले हैं। यहां पर वो बता रहे हैं शूरसेन प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए आया और वहां उसने मथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया और वहां पर ये 27वां श्लोक है। और आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि यही मथुरा फिर सारे राजाओं की यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी, लेकिन ये उसका महत्व नहीं है। वे क्या कहते हैं कि राजधानी बनी शायद शूरसेन की, लेकिन इसके कारण मथुरा को महत्व नहीं है। इसका मथुरा का महत्व यह है क्योंकि नित्य वास होता है श्री हरि का वहां पर। भगवान श्री रामचंद्र के समय इसी स्थान पर लवणासुर नामक राक्षस राज्य करता था, लेकिन तभी भी भगवान का नित्यवास वहीं पर था। भगवान इस पृथ्वी तल को छोड़कर फिर अपने भगवत धाम चले गए, लेकिन फिर भी मथुरा में आज भी उनका नित्य स्थान है। और इसीलिए क्योंकि भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो मथुरा में ही अवतरित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण बार बार आते हैं, तो भौतिक संसार में ये मथुरा मंडल ब्रज भूमि एक आध्यात्मिक संसार है। भले ही हम भौतिक तरह से देख सकते हैं कि भारत का एक अंग है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहां पर हम ट्रेन से या प्लेन से या चलकर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। इसके बावजूद ये भौतिक स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि नित्य शाश्वत रूप से हरि वहां पर निवास करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि असल में ये जो मथुरा नगरी है ये वैकुंठ से भी बढ़कर है। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो वैकुंठ लोक है इससे भी बढ़कर आध्यात्मिक स्थान है मथुरा। और फिर आगे बताते हैं कैसे राधाकुंड, वृंदावन, गोवर्धन, ये सब स्थानों का वर्णन करके बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्थान है इस संसार में। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत पर्याप्त है। क्यों? खास करके हमारे लिए, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देह त्याग करना पड़ता है कि नहीं? यू टू डाई। आप मरने के बिना वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन ये ऐसा भगवत धाम है जिसमें आप इसी शरीर में इसी मन से आज ही अगर आपकी इच्छा है पहुंच सकते हैं। इसलिए इनका भक्तों के जीवन में अत्यंतिक महत्व है। अर्थात श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के इस श्लोक में बताते हैं कि गौड़ी वैष्णवों के लिए राधाकुंड, मथुरा, गोवर्धन ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब यहां पर आते हैं, क्योंकि हम उनके भक्त हैं, हमारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से झगड़ा करें कि भाई आप अयोध्या बोलते हो सर्वश्रेष्ठ है, गलत है, ऐसा नहीं। उनके लिए अयोध्या सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनका जो रिश्ता है श्री राम से है। या नरसिंह देव के कोई भक्त के लिए अहोपलम सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ये आध्यात्मिक स्थान ऐसे ही होते हैं। एक बार हम लोग यात्रा में थे पहले वृंदावन की यात्रा की, फिर हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए। तो वृंदावन की यात्रा में हमारे गुरुदेव ने कहा कि हम लोग इस संसार के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं, यहां पर जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं उनका हजारों गुना लाभ हमें मिलता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से वृंदावन का वर्णन किया गया। और कुछ दिन के बाद हम वृंदावन छोड़कर कुरुक्षेत्र चले गए। फिर कुरुक्षेत्र में वो प्रवचन देने के लिए बैठे, फिर से उन्होंने कहा आज हमारा सब परम सौभाग्य है कि इस संसार के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हम लोग बैठे हैं। तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज आपने अभी अभी परसों ही वृंदावन के बारे में यही कहा था कि वृंदावन संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और आज हम कुरुक्षेत्र में हैं तो आप यहां पर भी वही बात कह रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसमें कोई कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं है, वृंदावन भी संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और कुरुक्षेत्र भी संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि जैसे जैसे भक्त की एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है उसको अपना स्थान पता चलता है, लेकिन जब तक वो स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है उसके लिए हर स्थान जो भगवान से संबंधित है ये सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं राधा कुंड नहीं बरसाना नहीं, सब सही है, एवरीथिंग इज गुड। सनातन गोस्वामी नंदगांव में भी रहते थे, बरसाना में भी जाते थे, गोवर्धन में भी रहते थे, मानसी गंगा के किनारे अलग अलग जगह आप देखेंगे सनातन गोस्वामी की भजन कुटिया अलग अलग स्थानों पर है, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। तो इसलिए रूप गोस्वामी हमारे गौड़ी वैष्णवों के लिए क्या कह रहे हैं, वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी। मधुपुरी ये वैकुंठ से भी बढ़कर है और इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में सनातन गोस्वामी को भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वे कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय यही पाचेर अल्प संग। छोटा सा भी संग ये पांच चीजों से हो जाए, कौन से, पहला तो साधु संग, दूसरा नाम कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, भागवत श्रवण जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, मथुरावास और श्री विग्रह की आराधना। वो कहते हैं कि जो भक्ति के 64 अंग है उनमें पांच अंग सर्वश्रेष्ठ है और उनमें से किसी भी अंग से हमारा अल्प से भी थोड़ा सा भी संबंध आता है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए मथुरावास अर्थात मथुरावास नवद्वीपवास कोई भी धामवास ये अभिन्न है। वहां जैसे ही हम लोग जाते हैं तुरंत ही हम पहचान पाए या नहीं पहचान पाए हम भगवान हरि के संबंध में आ जाते हैं, उनके प्रति प्रेम की जो अनुभूति है वो हमें वहां पर प्राप्त होती है। तो इसलिए आज की हम चर्चा ये मथुरावास क्या है, किस प्रकार से हमें मथुरावास करना चाहिए, मथुरावास का मतलब क्या है, कौन सी योग्यता होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर ये सर्व बहुत अच्छा अंग है, प्रभुपाद कहते हैं विथ योर बेस्ट एबिलिटी यू शुड ट्राई टू परफॉर्म दिस सर्विस ऑफ मथुरावास। आपकी जितनी शक्ति है उससे भक्त ने इसका फायदा लेना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। तो हमारी शक्ति का मतलब क्या है? हमारी योग्यता, हम किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे कि चुना ही पाई तुम्हारा करुणा सार। भक्त लोग कैसे सोचते हैं कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे गुरुवर, हमारे आचार्यगण, श्री चैतन्य महाप्रभु, सारे भक्त, इनकी कृपा से हम योग्यता प्राप्त करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने से हमें योग्यता प्राप्त होती है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो हमें देखना है कि किस प्रकार से आचार्यों ने और भगवान ने स्वयं मथुरा वास किया है। तो इसका सर्वप्रथम जो अंग है मथुरा वास के लिए, वो है मथुरा वास करने की इच्छा, दुर्दम्य इच्छा, लोलुपता, बेचैनी। भक्त को बेचैन होना चाहिए कि नहीं, मैं मथुरा वास कब करूंगा, मैं कैसे मथुरा को जाऊंगा, मैं कैसे नवद्वीप को पहुंचूंगा। एक बेचैनी होनी चाहिए, जैसे छोटे बच्चे, उनको हम बता दें कल हम फलाना फलाना पिकनिक बनाने को जाएंगे, तो कैसे बेचैन हो जाते हैं, वो दूसरे दिन खाना नहीं खा सकते क्योंकि बेचैन रहते हैं। उसी प्रकार से भक्त को बेचैन होना चाहिए। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह बेचैनी दिखाई, ये उत्सुकता दिखाई। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, बूढ़े नहीं हुए थे, केवल 24 साल के। और संन्यास लेने के बाद ये भूल गए कि क्यों संन्यास क्यों लिया इतनी बेचैनी है हृदय में वृंदावन के प्रति कि भूल गए कि संन्यास क्यों लिया। क्योंकि असल में उन्होंने संन्यास क्यों लिया था, क्योंकि जब हरि कीर्तन, ये नाम संकीर्तन, युग धर्म, ये युग धर्म का प्रचार करने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आए और प्रचार बहुत खूब करने लगे, सारे लोग वैष्णव बनने लगे, लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे थे जो कि इस कृपा से वंचित थे। महाप्रभु एक दिन मस्ती में, प्रेम में, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, गोपियां, इनके नाम को लेकर बहुत चिल्ला रहे हैं, गोपी गोपी। तो उनके जो विद्यार्थी थे ब्राह्मण, वो बोल रहे कि कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसे गोपियों का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लो। तो महाप्रभु उस समय श्रीमती राधा रानी के पूर्ण आवेश में थे गोपियों के, और हट, ये तुम्हारा कृष्ण, ये किस प्रकार का भगवान है, उसने तो वाली को छुपकर मारा था, गोपियों को चढ़कर भाग गया, कभी वापस नहीं आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। और विद्यार्थियों को आंख खोलकर देखा और जब देखा कि ये मेरा विरोध कर रहे हैं, तो एक लाठी निकाले, उनको मारने के लिए दौड़े। जब सारे विद्यार्थी भागकर पहुंच गए, महाप्रभु बहुत स्ट्रांग थे उनके शरीर रचना ऐसे थे 6.5 फुट का कद और बहुत ही हाथी के जैसा बल, तो भाग गए, डर गए, फिजिकली ऑल्सो दे गॉट अफ्रेड। तो ब्राह्मणों को झुंड में जाकर बोलने के, क्या निमाई आजकल क्या समझता है खुद को, हम उसको पीट देंगे। तो इस प्रकार की जब भावनाएं वहां पर दिखने लगी, तो महाप्रभु सोचने लगे इनका उद्धार कैसे होगा। ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी हैं, ऐसे लोग जो अपराधी हैं, जो देवी देवताओं की पूजा में मस्त है, उसमें लगे हुए हैं, केवल भौतिकतावाद को वो स्वीकार किए हुए हैं, उनका उद्धार कैसे। तो है जो जन्म से ब्राह्मण है, और मैं तो सबका, चांडाल तक का सबका उद्धार करना चाहता हूं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो इस कारण से संन्यास लेते हैं, बहुत बड़ा उदात्त विचार, जिसके लिए स्वयं की सुंदर पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन बेचैनी इतनी है मथुरावास की कि जैसे ही संन्यास लिए भागने लगे वृंदावन की तरफ। मेरे सारे पास टूट गए, अभी मुझे वृंदावन जाना है। तो एक क्वालिफिकेशन कि संसार के पास तोड़कर ही वृंदावन जाया जाता है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। What is this song? कबे हमा हेरी वो श्री वृंदावन। जब मन शुद्ध हो जाता है विषयों के कलमश से, रिक्त हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तब हम वृंदावन जा सकते हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब भागने लगे, अर्थात भगवान जब आते हैं तो अपने भाई के साथ ही आते हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम स्वयं। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये वृंदावन चले जाएंगे तो फिर इनका कार्य कौन करने वाला है, इसलिए वो थोड़े से आगे चलकर गए और लोगों को बताने लगे, कोई ग्वाले थे वहां पर, कि देखो अभी एक पीछे से एक गोसाई आएंगे सन्यासी, वो पूछेंगे वृंदावन का रास्ता, तो आप इस प्रकार से रास्ता दिखाओ जो शांतिपुर की तरफ जाता है। तो महाप्रभु हाथ उठाकर हरि बोल करकर जा रहे हैं, और जैसे उन्होंने गैया देखी, ग्वाल बाल को देखे, बहुत खुश हो गए, सोच रहे हैं शायद मैं गोकुल पहुंच गया, क्यों गाय दिख रही है। तो जाकर ग्वाल बालों को पूछने लगा वृंदावन किधर है, तो उन्होंने कहा इस तरफ है। तो तुरंत पहुंच गए और देखा शुद्ध पानी की गंगा बह रही है, तो सोचने लगे वाह मैं यमुना पहुंच गया, खुश हो गए, प्रणाम किया, डुबकी लगाई और खुशी से आंखों में आंसू, और सोच रहे कि मैं वृंदावन में हूं, यमुना में हूं, खुशी में। और अचानक यहां देखते हैं तो बाजू में एक नाव खड़ी है जिसमें अद्वैताचार्य बैठे हैं। बोले अद्वैता मेरे पहले आप वृंदावन पहुंच गए। तो उन्होंने कहा नहीं महाप्रभु जी, ये शांतिपुर है ये शांतिपुर है, लेकिन लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं यमुना में स्नान कर रहा हूं। बोले कोई गलत नहीं है, आप पश्चिमी तट पर स्नान कर रहे जहां पर यमुना आती है, और वैसे भी आप जहां पर हो वहीं पर वृंदावन है, चलो कपड़े पहन लो घर जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए। फिर वहां से अपनी मां की आज्ञा से जगन्नाथपुरी में रहने लगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में रहने के बाद भी वृंदावन जाने की बेचैनी अभी तक बाकी थी। दक्षिण भारत की यात्रा करके आने के बाद सारे भक्तों से, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, सबको पूछते थे कि क्या मैं वृंदावन जा सकता हूं, लेकिन भक्त वो सोचते थे महाप्रभु चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, इतने सारे भक्त अपना जीवन कैसे चलाएंगे। इसलिए वो कहते थे कि अभी थोड़े दिन के बाद डोले यात्रा आने वाली है, आप रुक जा। फिर एक और एक नया उत्सव का नाम लेते थे, फिर अभी तो रथ यात्रा आने वाली है, इस प्रकार से चातुर्मास शुरू हो जाता था। फिर वहां रहते थे, फिर से पूछते थे, फिर से कुछ और बात कहते थे। 2 साल तक महाप्रभु बार बार पूछते रहे और भक्त बार बार टालते रहे। फिर महाप्रभु ने उनको बताया कि देखो आप किसी न किसी प्रकार से मेरी बात को टाल रहे हैं और मैं आपकी आज्ञा के बिना वृंदावन नहीं जा सकता। ये भी बहुत बड़ी बात है, महाप्रभु दिखा रहे हैं कि वृंदावन जाते समय भक्तों के आशीर्वाद से ही जाना चाहिए। वृंदावन कोई भौतिक स्थान नहीं है जहां पर आप ऐसे ही चले जाओ टिकट लेकर, वहां पर भक्तों के आश्रय से ही जाना पड़ता। जब तक भक्तों का आशीर्वाद नहीं मिला तब तक वहां नहीं जाना चाहिए, ये महाप्रभु दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मैं गंगा होकर जाऊंगा, मेरी माँ को मिलूंगा, दो माँ है मेरी, सची माता और गंगा माँ, दोनों को मिलकर फिर जाऊंगा। और फिर रास्ते में राम के लिए जगह जगह पर जाते हैं, राम के लिए नामक स्थान पर, रूप सनातन को मिलने के लिए, और रूप और सनातन को आशीर्वाद देते हैं। राम के लिए में इतनी भीड़ थी, लाखों लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ, और वो पीछे पीछे जा रहे हैं, महाप्रभु आगे आगे जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी, उन्होंने एकांत स्थल पर जाकर महाप्रभु से कहा कि इतनी भीड़ लेकर आप वृंदावन जाएंगे? वृंदावन को भजन का स्थान है, शांत स्थान है, मुझे लगता है बराबर नहीं इतने लोगों के साथ जाना। तो उसके आगे कन्हाई नाटशाला में जाकर महाप्रभु इस बात पर गौर करते कि सनातन गोस्वामी ने सही कहा है, फिर से लौट आते हैं। और फिर अगले चातुर्मास के बाद फिर एक दिन रात को रामानंद राय स्वरूप दामोदर से मिलकर कहते हैं कि कल सवेरे मैं अकेले ही वृंदावन की तरफ जाऊंगा, अगर आपकी आज्ञा है तो, लेकिन मेरे साथ और कोई नहीं आएगा। क्या आपको ये चलेगा? तो भक्तों ने कहा, अगर आप हमारा मत पूछ रहे हैं तो हमारा ऐसा कहना है कि कम से कम दो व्यक्तियों को आप साथ में लेके जाइए, क्योंकि आप वन से जाएंगे और वन में कभी कुछ भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको कोई ना कोई सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसे भक्त दो जो मेरे निकटवर्तियों में से नहीं है, क्योंकि मैं एक लोग लेके जाऊंगा तो दूसरों को दुख होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बलभद्र भट्टाचार्य, इसको आप लेके जाइए और साथ में और एक ब्राह्मण लेके जाइए। और फिर जो झरीकांड, ये जो वन है, वहां से गुजरते हुए महाप्रभु वृंदावन की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो सोचते हैं वृंदावन में मैं जा रहा हूं, तो सैकड़ों गुना उनका उत्साह बढ़ जाता है। वो सोचते हैं मैं वृंदावन पहुंच गया, जब जंगल में भी कोई नदी दिखते थे तो सोचते थे यमुना है। देखो उनके उनकी वृत्ति कैसी है, उनकी चेतना कैसी है, यही चेतना होनी चाहिए मथुरावास के लिए। और फिर जब वो सही में मथुरा में पहुंचे तो ऐसा कहते हैं कि उनकी जो वृंदावन देखने की लालसा है वो हजारों गुना बढ़ गई। वो सोच रहे अभी मैं वृंदावन जाऊंगा, गोवर्धन पहुंच जाऊंगा, खुश थे। और वृंदावन में सारे जो 12 द्वादश कानन वो सब घूमते हैं, गोवर्धन उसकी परिक्रमा करते हैं और चाहते हैं कि गोवर्धन के ऊपर जो स्थित है गोपाल माधवेंद्रपुरी के, उनको मैं देखना चाहता हूं। और गोपाल भी उस समय ये सोचकर कि मुझे अभी दर्शन देना है, एक रूमर एक प्रजल्प फैला देते हैं कि तुर्कस्तान से कोई सैनिक आ रहे हैं वृंदावन के ऊपर प्रहार करने के लिए। तो तुरंत ही भगवान को नीचे लाया जाता है, गंटुली नाम का एक गांव है वहां पर रखा जाता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु खूब कई दिनों तक गोपाल जी के साथ रहते हैं, सो हैप्पी। तो ये जो बेचैनी है ये प्रथम गुण है, प्रथम क्वालिफिकेशन है वहां पहुंचने के लिए। फिर दूसरा, वहां पहुंचने के लिए और एक क्वालिफिकेशन लगता है कि हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए। जो ब्रजवासी होते हैं उनकी चेतना कैसे होती है? सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, ये उनकी सारे धर्मों को त्याग कर उनके लिए केवल एक ही धर्म है, वो है भगवान श्री कृष्ण का आनंद। नंद महाराज को छोटा सा बालक कृष्ण पूछ रहा है कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये आप जो इंद्र पूजा कर रहे हैं तो नंद महाराज कह सकते थे कि ठीक है आपके लिए भी हम दूसरा कुछ उत्सव मनाएंगे, लेकिन ये तो करना चाहिए, धर्म में लिखा है, हमारी ये रीति रिवाज है। लेकिन कृष्ण ने कहा है कि इसी भोग सामग्री को, दूसरे नहीं, इसी भोग सामग्री को लेकर हमें गोवर्धन की पूजा कर दिए। वो जानते थे कि इंद्र खफा हो सकता है, इंद्र को क्रोध आ सकता है, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य। गोपियां, उनका स्त्री धर्म था, कोई अपने पति के साथ सोए हुए हैं, कोई अपने बच्चे को पिला रहे हैं, कोई भी अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और उनको बुलाया, सब कुछ त्याग कर कर वहां दौड़ते चले गए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर श्री कृष्ण का शरण। ब्राह्मण पत्नियां, द्विज पत्नियां, जो उनके ब्राह्मण थे वो यज्ञ में लगे हुए हैं, उन्होंने कृष्ण के जो सखा है उनको देखा तक नहीं, भिक्षा देना दूर, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो उनकी पत्नियां हैं वो शुद्ध भक्त है, उनके पास जाइए, मेरा नाम कहकर थोड़ा सा भोग लेकर आइए। द्विज पत्नियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ और ग्वालों के साथ बाजू के वन में ही है, सब कुछ त्याग, यहां तक कि उनके पतियों ने उनको रोकना चाहा फिजिकली, शरीर के रूप से। तो एक जो जा नहीं सकी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन पहुंच गए। ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है, सर्वधर्मान परित्यज्य। इस प्रकार की जो चेतना है, ये हमें वृंदावन नद्वीप मथुरा जाने के योग्य बनाती है। अर्थात ये तब होता है जब हम अपने झूठे अहंकार से दूर हो जाते हैं। हमारा झूठा अहंकार क्या है कि हम शरीर है, हमारा फलाना फलाना नाम है, हमारे फलाने फलाने माता पिता है, हम इस परिवार से है, हम इस कुल से, हम इस देश से, इस समाज से हैं। ये झूठे स्वत्व की भावना जो है, ये भी भगवान को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये सारे जो गुण हैं, भगवान ये भी बताते हैं भगवद गीता में कि किस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय होता है, कौन मेरे धाम में आ सकता है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुणैव, अनेकों प्रकार के गुण बताते हैं। तो ये गुण कब आएंगे, जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, हमें इनको ऊपर से लादने की जरूरत नहीं है। जब हम हर दिन प्रतिदिन भक्ति का मार्ग अपनाते हैं और हृदय को साफ करते हैं, तो स्वयं ही ये गुण स्फुरित हो जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम गुण जो है वो ये है कि हमें अपने आप को एटलीस्ट बाय आवर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अपने जो बुद्धि है उससे यह समझ कि मैं केवल दास हूं, मैं भगवान के दास का दास का दास का दास हूं। क्योंकि दास के पास कोई और क्वालिफिकेशन नहीं होता, उसका एक ही क्वालिफिकेशन है, दास। तो उसको द्वेष क्यों होगा, क्योंकि वो सबका दास है। दास को कोई द्वेष हो सकता है नहीं। इसलिए किसी का द्वेष करते हैं हम लोग, तो हमें पूछना चाहिए कि भाई मैं कौन सी चेतना में हूं, दास के स्वामी के। तो ये दास की जो भावना है, ये ब्रजवासियों का सर्वप्रथम गुण है, दासत्व की भावना। अर्थात इसी दासत्व की भावना से हमें इस सांसारिक विषयों से, जिनका शरीर भोग करना चाहता है, हमारा अहंकारी मन उसके पीछे भागता है, उनसे हमें रिक्त होना चाहिए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं कि हमें सेवा में जुड़ना चाहिए। और सेवा, सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन सी है? श्रील प्रभुपाद यहां पर कह रहे हैं कि जो इस मथुरा वास का, मथुरा का वर्णन या कृष्ण भक्ति का वर्णन दूसरों को करके दूसरों को मथुरा में लेके आता है, यह सर्वश्रेष्ठ बनता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जीवन भी हम देखेंगे कि वे वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, बहुत प्रसन्न थे, रूप गोस्वामी के समाधि के सामने बैठकर घंटों तक विचार करते थे, रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर भी 70 वर्ष की उम्र में जब हम लोग सोचेंगे कि अभी मैं भजन करूंगा, अपने कुटिया बना के मैं केवल जपा और भगवान के जो ग्रंथ है उनका अध्ययन, बस, कितनी सुंदर बात है। कई लोग करते हैं और विशिष्ट बात है कि ये बहुत अच्छी बात है, प्रभुपाद उसको ये नहीं कहते गलत है, ही इज सेइंग इट इज वेरी गुड। लेकिन उससे भी बढ़कर, क्योंकि अपने गुरु ने उनको आदेश दिया था कि ये जो धाम का जो वर्णन है, हरि का जो कीर्तन है, इसको आप सारे संसार में लेके जाइए। और इसीलिए वृंदावन धाम सारे संसार में देने के लिए श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में चले पड़े। आप में से कितने लोग 70 साल के हैं? कोई है? एक। हाँ, इमेजिन। और केवल 70 साल की उम्र नहीं है, जब जहाज पर जा रहे हैं तो एक के बाद एक दो हार्ट अटैक आए उनको, इमेजिन। हम थोड़े बीमार हो जाते तो हम लोग क्या सोचते हैं, अभी मुझे शांति दो, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो, है कि नहीं? विमान है ना गिरधारी, अभी आप बीमार थे कुछ समय, ऐसे लगता है कि नहीं? नेचुरल लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा गिव मी अ ब्रेक, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन प्रभुपाद जहाज से उतरने के बाद कहाँ गए? ये नहीं कि सोचे भाई कोई कार्डियोलॉजिस्ट ढूंढ लूं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके पहले ट्रीटमेंट लूं, वो भी नहीं, सीधे प्रचार में लग गए। ये प्रभुपाद है। क्यों? क्योंकि कोई स्वत्व की भावना नहीं है, अहंकारी स्वत्व की कोई भावना नहीं है, एक ही भावना, ब्रज भावना, दासत्व की भावना, कि मेरा शरीर अमेरिका में छूट जाए या लंदन में छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सर्विंग वृंदावन, आई एम सर्विंग कृष्णा। ये सही ब्रजवास है। इसलिए भक्तों के, खास करके शुद्ध भक्तों के बारे में बताया जाता है कि ये जहां जाते हैं उसी को तीर्थ बना देते हैं, यही तीर्थ है। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं ऐसे कि आप जहां जाते हैं उसी खुशी को तीर्थ स्थान बना देते हैं। प्रभुपाद ने भी यही किया, उन्होंने जगह जगह पर जहां पर भी गए वहां पर एक नया वृंदावन खड़ा किया, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो या न्यूयॉर्क हो या लंदन हो, पेरिस हो या अफ्रीका हो, जहां पर भी गए वहां एक छोटा सा वृंदावन किया। कैसे? चेतना से। और भगवान की लीला देखो कि ये सब करने के बाद इस उम्र में प्रभुपाद को बराबर फूल की तरह फिर से वृंदावन लेके आए। लेकिन वृंदावन में आने के बाद भी 1977 में प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं अर्जुन की तरह हूं, मैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मरना चाहता हूं, मैं फिर से प्रचार करने जाऊंगा। तो इतने भयंकर शारीरिक स्थिति में भी वो फिर लंदन जाते हैं, वहां पर भक्तों को प्रचार करते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था। फिर से भक्त लोग उस स्थिति में प्रभुपाद को वृंदावन लेके आते हैं और फिर वृंदावन में आखिरी क्षण तक श्रीमद् भागवतम का, भले वो जा नहीं सकते पाश्चात्य देशों में, लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो तात्पर्य है वो सबको आखिरी दिन तक बता रहे हैं। ये सही ब्रजवास है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में आखिरी अध्याय में कहते हैं कि जो ऐसा भक्त है जो मेरे बारे में, मेरे नाम के बारे में, मेरे रूप के बारे में, मेरे धाम के बारे में जो दूसरों को वर्णन करता है, इसके जैसा भक्त मेरे लिए और कोई प्रिय नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, उसी को हम गौड़ीय वैष्णव अपनाते हैं। हम बेचैन रहते हैं, कब वृंदावन जाऊं, कब मथुरा जाऊं, कब नवद्वीप जाऊं, लेकिन वहां पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना जो आध्यात्मिक बल बढ़ाते हैं और फिर आकर उस बल के आधार पर अपने गुरुजनों की जो आज्ञा है कि इस ज्ञान को दूसरों को बांटो, उसको हम करते हैं। यह सही ब्रजवास है। खास करके प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु, दोनों चैतन्य महाप्रभु ने जब जगदानंद पंडित को भेजा वृंदावन, तो उन्होंने क्या कहा, अकेले मत जाना, आप हमेशा सनातन गोस्वामी के साथ रहना। तो इसलिए भक्त जब मथुरावास भी करते तो कैसे करते, अकेले नहीं करते, भक्तों के संग में करते, भक्तों से सुनकर भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हुए कैसे व्यवहार करना चाहिए इसको समझ कर वहां पर रहकर फिर से वापस आते हैं। प्रभुपाद कहते तीन दिन रहो, अगर कोई सेवा नहीं है तो तीन दिन से ज्यादा मत रहो। अर्थात अगर कोई वृंदावन में कोई सेवा कर रहा है वो बात अलग है, सेवा के लिए आप रह सकते हैं, वृंदावन में केवल सेवा के लिए ही रहना चाहिए, दूसरा कोई कारण नहीं वृंदावन में रहना चाहिए, अन्यथा तीन दिन रहकर वापस आ जाइए। क्योंकि हम तीन दिनों के बाद क्या करना शुरू करते थे, अपराध शुरू करना, क्योंकि मथुरा इसलिए नहीं फेमस है कि बहुत सुंदर है, आज जाएंगे आप तो देखेंगे सुअर दिखेंगे, कचरा दिखेगा, यहां वहां अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के वो व्हीकल्स मथुरा आप जैसे जाते हो क्या चित्र आता है आपके सामने, मथुरा स्टेशन के बाहर है तो क्या चित्र आता है, वो आवाज करने वाले व्हीकल्स, कोई वहां पर कूड़ा गिरा हुआ है तो वहां पर कोई भिखारी है, यही चित्र आता है, लेकिन वो सही चित्र नहीं है, वो योग माया का आवरण है जो हमें दिखाता है। इस प्रकार से सही चित्र क्या है, एक भगवान स्वयं वहां नित्य निवास करते हैं, और जैसे हम वृंदावन में पदार्पण करते हैं हमारा सीधा सानिध्य भगवान से आता है, और भगवान से सानिध्य आने के बाद क्या करने का, एक दूसरे को देखने का नहीं, सेवा करनी है। भगवान को हम लोग देखते देखने के लिए नहीं चाहते हैं, हम भगवान की सेवा करने चाहिए। यही गौड़ीय वैष्णवों का, ये भक्ति के मार्ग का एक बहुत सुंदर चमत्कार है कि भगवान के साथ रहने के लिए हमें भगवान के सामने खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हम इतनी सुंदर सेवा करें कि भगवान स्वयं आकर अपने सामने खड़े हो जाए, यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, इसी को हम धामवास कहते हैं। तो धामवास हम राधा गिरधारी मंदिर में भी कर सकते हैं, हमें वहीं बेचैनी होनी चाहिए, रात को सोते समय कब सुबह होती है, कब मैं भागू भगवान का दर्शन करने के लिए, कब मैं जाकर सारे भक्तों की सेवा करूं, किस प्रकार से सेवा करूं, ये अगर हमारी चेतना है दास्यत्व भावना की, तो हम जहां पर भी रहेंगे वहां पर हम धाम में रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम ये मथुरा वास कर सकते हैं, जिसके बारे में श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपने शांति से सुन के लिया दो शब्द। किसी कोई प्रश्न है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।